समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शिफाली।
हेलो आकर्षिता एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। एंड डियर लिसनर्स, एज आकर्षिता हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में भारत के फिनटेक कौशल को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि फिनटेक क्षेत्र ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट एट पालघर इन महाराष्ट्र।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का समय नहीं रहा और हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं।
And at Paralympics Games in Paris, India's Avni Lekhra clinched gold with a game's record tally of 249.7 in shooting, while Mona Agarwal took the bronze with an aggregate of 228.7. And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So, Akashita, today we are going to talk about fintech, right? Ji. So, the Prime Minister Narendra Modi today said that India's fintech is going to ease the lives of people globally, addressing a special global fintech fest, GFF 2024 in Mumbai. Mr. Modi said, India's fintech adoption is unmatched in speed and scale, and half of the world's real-time digital transactions happen in India.
So, पिछले 10 साल में fintech space में $31 billion से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे fintech startups में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था, लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव दूरगामी है।
The Prime Minister also visited the GFF exhibition showcasing the latest innovations of the fintech landscape. Speaking on the occasion, Governor of the Reserve Bank of India, Shaktikant Das, opined that India now stands on the cusp of a transformation where technology will be the engine to meet aspirations of every citizen. So, आकर्षिता, हम बात कर रहे हैं फिनटेक की, फिनटेक फेस्ट की, तो फिनटेक क्या है थोड़ा हम अपने लिसनर्स के लिए सिंपली सम अप कर देते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, बट लेट्स जस्ट रन ओवर इट। फिनटेक, और विच इज शॉर्ट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। This broad term encompasses a wide array of technological advancements in financial services, jaise ki mobile banking, online lending platforms, digital payment systems, robo-advisors and blockchain-based applications such as cryptocurrencies.
वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में 350 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भारत और अन्य देशों से करीब 800 वक्ता हिस्सा लेंगे। इसमें नीति निर्माता, नियामक, वरिष्ठ बैंकर, उद्योगपति और शिक्षाविद शामिल हैं। फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को और सुगम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, निवेश, बीमा जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने ऋण तक पहुंच को भी आसान और समावेशी बना दिया है। और शिफाली, हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत में रेहड़ी पटरी वालों की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो औपचारिक बैंकिंग से कहीं बाहर थे। हम अभी भी बहुत साल पहले की बात करें तो अभी भी हम उनसे जो है पैसे में मतलब एज ए डिजिटली उनसे लेन देन नहीं करते थे, ट्रांजेक्शन नहीं करते थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं कि सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, सबके पास एक स्कैनर रहता है, क्यूआर कोड रहता है, हम तुरंत उसको स्कैन कर लेते हैं और डिजिटली ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश टू ऑनलाइन पेमेंट।
जी, तो फिनटेक ने इस स्थिति को बदल दिया है और आज वो पीएम स्वनिधि योजना से कोलेट्रल फ्री लोन ले पा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। कभी शेयर और म्यूचुअल जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं शिफाली की किस तरीके से गांव-गांव और कस्बों में भी ये सारी चीजें संभव होती नजर आ रही हैं। आज कैसे गांव में एक छोटा व्यापारी लोन ले सकता है आसानी से और अपना व्यापार शुरू कर सकता है, और डिजिटल लेन देन के माध्यम से जो है हम देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है उनके खातों में डायरेक्टली आसानी से पैसे जो है उनको लोन के उपलब्ध करा पा रही है। क्योंकि पहले कुछ मीडिएटर्स होते थे तो उनको उतनी आसानी से पैसे नहीं मिल पाते थे, लोन नहीं मिल पाते थे, और कभी कभी वो इसका शिकार हो जाते थे कि उनको मीडिएटर को इतना देना पड़ रहा है कि वो उनका लोन ही वो चुकता नहीं हो रहा है।
सो एक्सेस हैज बिकम वेरी डायरेक्ट एंड वी हैव डन अवे विद मिडलमैन।
जी, और आज गांव और कस्बों में भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए हैं। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, और ये भी फिनटेक्स के बिना संभव नहीं हो पाता। शिफाली, हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान या उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बीच में ऐसी कई दौर आए जब हम स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे थे, उस टाइम पे भी हमने कैसे ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑनलाइन स्किल सीखे, मार्केटिंग स्किल सीखा और भी बहुत ढेर सारा कुछ सीखा, और वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं गया। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फिनटेक।
True, and it opens up an array of opportunities and facilities for the youth, for the old and everybody.
जी, तो यानी भारत की फिनटेक क्रांति जीवन की गरिमा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है, और फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है।
The Prime Minister highlighted the 10th anniversary of Jan Dhan Yojana a few days ago and said that it has become a huge medium for women empowerment. He informed that more than 29 crore bank accounts have been set up for women so far, opening up new opportunities for savings and investments. He further added that the largest microfinance scheme, Mudra Yojana, was launched on the philosophy of Jan Dhan accounts and has disbursed a credit of 27 trillion rupees so far. 70% of the beneficiaries of the scheme are women. Shri Modi informed. He further explained that Jan Dhan accounts are also used in connecting self-help groups with the banking system and have benefited 10 crore rural women. Jan Dhan program has laid strong foundations of financial empowerment of women, PM Modi remarked. India has called for a global framework for AI, the Prime Minister said, noting that the use of sound boxes along with QR codes is one such innovation.
भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। साथियों, भारत की फिनटेक क्रांति की उपलब्धि सिर्फ इनोवेशंस के लिए ही नहीं बल्कि एडॉप्शन लेकर के भी है। भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को एडॉप्ट किया है उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिल सका। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को भी जाता है और हमारे फिनटेक को भी जाता है। देश में इस टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रस्ट पैदा करने के लिए अद्भुत इनोवेशन किए गए हैं। क्यूआर कोड के साथ साथ साउंड बॉक्स का उपयोग ऐसा ही इनोवेशन है।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार देश विदेश से भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान राम के दरबार में आने वाले भक्त न सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद मांग रहे हैं बल्कि दिल खोलकर दान पुण्य भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि श्री रामलला को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दान में 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और प्रबंधन देखने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष में श्री राम मंदिर में चढ़ावे और व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में रामलला को 363 करोड़ 34 लाख रुपए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने 53 करोड़ रुपए चेक या नकद के रूप में ट्रस्ट के काउंटर पर जमा किए हैं। मंदिर के दान पात्र में 24 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-2024 पूरा हो गया। सितंबर मास में इनकम टैक्स में रिटर्न भर दी जाएंगी, इसलिए एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट उसकी समरी सारा प्रस्तुत किया गया। हमारे काउंटर पर आकर लोगों ने चेक दिए या नकद धन दिया, ये 53 करोड़ रुपया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 मार्च 2024 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 दान पात्र जो भगवान के सामने हुंडी रखी रहती है उसमें 24 करोड़ 50 लाख रुपया गिनती होकर बैंक में जमा हो पाया। लगभग 71 करोड़ रुपया लोगों ने अपने अपने गांव से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया है। 3 वर्ष की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रस्ट ने अपना पंजीकरण विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कराया, तो 2023-24 वित्त वर्ष में 10 करोड़ 43 लाख रुपया 31 मार्च के पहले आया है। बैंक में जो ब्याज रहता है वो लगभग 204 करोड़ रुपया मान सकते हैं। चलियर हमें 363 करोड़ 34 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। स्थाई निर्माण जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो मंदिर निर्माण है। मंदिर के सहयोगी जैसे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मंदिर की अंदर की ऐसी चीजें। मंदिर निर्माण पर 540 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं हर साल होते रहते हैं वो लगभग 146 करोड़ है। ये संभावना बताई लगाई गई कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मंदिर पर कितना खर्चा और हो सकता है। आकलन किया गया है कि केवल मंदिर पर 670 करोड़ रुपया और खर्च हो सकता है। इसके अलावा 180 करोड़ रुपया और अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। ये केवल एस्टिमेशन है, अर्थात टोटल 850 करोड़। ये प्रोजेक्शन है, ये कल्पना की गई है। पिछले 4 वर्षों चांदी और सोना समाज ने स्वेच्छा से समर्पित किया है भगवान को। अंदाजन 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। प्रथम तल पर संगमरमर के बने राम दरबार के साथ टाइटेनियम से बने राम दरबार को भी रखा जाएगा। टाइटेनियम का राम दरबार रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। इसके अलावा द्वितीय तल के गर्भगृह को भी विशेष बनाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी के साथ ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
20 अगस्त से आरंभ 33वें नेपाली भाषा के संवैधानिक मान्यता दिवस पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र गोरखलैंड क्षेत्रीय प्रशासन, उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी तराई के इलाकों व सिक्किम में भव्य रूप से एक जातीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
यह उत्सव 31 अगस्त को दार्जिलिंग के गोरखा रंगमंच भवन में एक बड़ी गोष्ठी के साथ संपन्न होगा। इस गोष्ठी में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख, कार्यपाल, जिला शासक तथा अन्य वरिष्ठ साहित्यकार और भाषाविदों की विशेष उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर नेपाली भाषा के संरक्षण व संवर्धन में विशेष योगदान देने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। स्मरण रहे भाषा दिवस पर 20 अगस्त से 31 अगस्त तक 11 दिन व्यापी साहित्य सांस्कृतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नेपाली भाषा का संरक्षण, संवर्धन व प्रसारण करना है। अन्य वर्षों से कुछ अलग हटकर इस वर्ष पश्चिम बंगाल के दोनों पहाड़ी जिले दार्जिलिंग व कालिम्पोंग तथा सिक्किम राज्य में भाषा मान्यता दिवस पालन किया गया। इसमें कविता, निबंध, हाजिरी जवाब व लोक नृत्य जैसी प्रतिस्पर्धाएं राज्य तथा स्थानीय प्रशासन, साहित्यिक व सामाजिक संगठनों एवं विद्यालयों द्वारा आयोजित किए गए। कई स्थानों पर विशेषकर दार्जिलिंग, कर्सियंग, मिरिक, कालिम्पोंग, गोरुबथान, सिलीगुड़ी, तराई व डुअर्स में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन गोष्ठियों में साहित्यविद तथा भाषा प्रेमी प्रबुद्ध जनों ने नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद जिस प्रकार से इसका विकास होना चाहिए था वह विकास न होकर उल्टे दिन प्रतिदिन इसका ह्रास हो रहा है, इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त किए। अंग्रेजी के बढ़ते प्रचलन के कारण पीढ़ी में नेपाली भाषा का ह्रास एक गंभीर चिंतनीय विषय है। इस आशय को प्रायः सभी वक्ताओं ने व्यक्त किए तथा सिक्किम के राज्य सरकार एवं दार्जिलिंग गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से सरकारी कामकाज, आवेदन व आदेश आदि में नेपाली भाषा को अनिवार्य करने का सभी ने एक स्वर में आह्वान किया। परिणाम स्वरूप सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग तथा गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख कार्यपाल अनित थापा ने एक अधिसूचना जारी कर सिक्किम व दार्जिलिंग पहाड़ में नेपाली भाषा के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया। ऐसे ही अनेक संगठनों ने सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कामकाज में अधिक से अधिक नेपाली भाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया है। नेपाली भाषा के संवर्धन व संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका की प्रशंसा करते हुए नेपाली भाषा के प्रचार प्रसार में और अधिक प्रखरता लाने का भी निवेदन किया गया है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन 2 अप्रैल 2025 से शुरू होने की संभावना है। ये हवाई अड्डा वृहत दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत, विभिन्न राज्यों और विश्व के अलग अलग देशों से जोड़ेगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA से वाणिज्यिक उड़ानें अगले वर्ष अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। हवाई अड्डे की ओर से कहा गया है कि वह इस वर्ष के अंत तक उड़ान प्रक्रिया परीक्षणों सहित एरोड्रोम लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दाखिल करेगा। हवाई अड्डे के पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा जिसमें सालाना 1,20,00,000 यात्रियों के यातायात को संभालने की क्षमता होगी। सभी चार विकास चरणों के पूरा होने पर हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वृहत दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगा। NIA ने बेहतर नेटवर्क योजना और उड़ान संबंधी आवश्यकताओं के लिए वैश्विक हवाई अड्डों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और आइए अब बात करते हैं पेरिस में खेले जा रहे पैरालंपिक्स खेलों की। और इन खेलों की नवीनतम जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी हैं हमारी खेल संवाददाता लवलीन निगम। लवलीन, आज भारतीय पैरा एथलीट्स ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं?
आज शानदार शुरुआत की है आकर्षिता पेरिस पैरालंपिक में। खासतौर से हमारे निशानेबाजों ने जो है 2 पदकों पर अब तक कब्जा कर लिया है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर हासिल किया। और हम बता दें कि उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में अपना बनाए हुए स्कोर को ही सुधारा है। वहां उन्होंने 249.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इस स्पर्धा का कांस्य पदक मोना अग्रवाल को मिला है। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। उधर तीरंदाजी की बात करें, कंपाउंड वर्ग में सरिता देवी अगले दौर में पहुंच गई हैं। पुरुषों के SH1 के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नारवाल फाइनल में पहुंच गए हैं। इस स्पर्धा का फाइनल आज ही खेला जाएगा, यानी हम और पदक की आज उम्मीद कर सकते हैं। उधर महिला डिस्कस थ्रो फाइनल F55 श्रेणी का मुकाबला जारी है। साक्षी कसाना हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है देश का, और वो अभी 7वें नंबर पर हैं। बैडमिंटन की बात करें, SL3 श्रेणी, मानसी जोशी यूक्रेन की ओक्साना कोजियाना से हारकर महिला सिंगल से बाहर हो गई हैं। पुरुष वर्ग में मनोज सरकार भी SL3 वर्ग के दूसरे मैच में थाईलैंड के मोंगखोन बुनसुन से हार गए हैं। टेबल टेनिस में भावना सोनल बेन की जोड़ी WT10 वर्ग में हारकर बाहर हो गई है। उधर महिलाओं की T35 100 मीटर की दौड़ के फाइनल में भारत की प्रीति पॉल की चुनौती है अभी जारी है। साइकिलिंग के क्वालिफिकेशन मुकाबले में भारत के अर्शद सैफ दावा पेश करेंगे। रोइंग की बात करें तो अनीता और नारायण कोंगनपल्ले डबल स्कल में चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल रात मिक्स्ड कंपाउंड तीरंदाजी में शीतल देवी राकेश कुमार की टीम ने सम्मिलित स्कोर किया था और एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तालिका की बात करें, भारत के पास एक स्वर्ण है, एक कांस्य है और वो 9वें नंबर पर है।
धन्यवाद लवलीन नवीनतम जानकारी देने के लिए।
जी लवलीन, थैंक यू। एंड नाउ डियर लिसनर्स, वील टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
इन टुडेज एपिसोड वी ब्रिंग यू द स्टोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा विनायक आचार्य, who was born on this day 1918 in Bharampur, Odisha, affectionately called as Odisha's Ajat Shatru, which means one who has only friends and no enemies. A frail-looking man, the khadi-clad Vinayak Acharya was a simple and soft-speaking gentleman. He was closely associated with the Indian freedom struggle and actively participated in the Quit India movement, which had a marked impact on the city of Bharampur.
He played a vital role in all the phases of manifold development of Odisha. His political, social, educational and administrative contributions specially merit high appreciation. He was deeply influenced by his father Raghunath Acharya and a contemporary literary personality, Ramachandra Acharya.
Vinayak was an independent-minded person and never wanted to join any government service under the British. Consequently, he joined a non-government high school in Hinjilikat and subsequently joined the Bharampur Municipal High School as an assistant teacher. He had a great quality of perseverance and was a promising and pragmatic leader in his own field.
From the beginning, he was attracted towards socialism and proved to be a true Gandhian in the subsequent phases of his life. During the Quit India movement, Acharya worked as a messenger of the freedom fighters to pass on relevant information from person to person, talking exclusively to AIR, eminent Gandhian Dr. Biswajit Roy, trustee, Central Gandhi Smarak Nidhi, Odisha, shed light on the contribution of the great freedom fighter.
जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ उड़ीसा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे उनके परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया।
आचार्य मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ ओडिशा। हिज पॉपुलैरिटी एज अ गुड टीचर अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम बहरमपुर एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर ओडिशा।
एज अ रिजल्ट ही वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड बीनो मास्टर बाय ऑल। ड्यूरिंग हिज टीचिंग करियर ही फॉर्म्ड नवोत्कल सेवा संघ to help the downtrodden of the society. Haridakhandi Math was established at his initiation to help the poor students.
In 1954, when language clashes broke out in southern Odisha, Acharya led peace squads in the troubled areas. He also joined the cause of downtrodden communities, often shocking orthodox communities, by sitting down to a meal with lower caste communities. The country's sovereignty, secularism, national integration and eradication of class biases. During his chief ministership from 1976-77, he laid considerable emphasis on the elementary education and made efforts to reduce the school dropout cases. He passed away on 11 December 1983.
However, Vinayak Acharya still lives in the memory of our great nation for his selfless devotion to national causes. His zeal towards social reforms will continue to inspire people to work for the empowerment and upliftment of weaker sections of the society. India is forever indebted to the selfless service of such great persons.
And listeners, in business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended the month's last trading session with gains amid positive global cues. Both indices continued their upward march, reaching new high levels in the intraday trade today. At the closing bell, pack of 30 companies, the Sensex was up 231 points or 0.28% at 82,365. The Nifty 50 ended the session at 25,235 with 0.33% or 83 points again.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस।
आज प्रख्यात इतिहासकार एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष बिपिन चंद्र की पुण्यतिथि है। वे भारत की स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतनधारा के इतिहासकार थे। इसके अलावा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य रहे। उन्होंने इतिहास पर करीब 20 पुस्तकें लिखी, जिनमें आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद, भारतीय वामपंथ पर उनकी पुस्तकें चर्चित थी। उन्हें 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Dear listeners, today is the death anniversary of Lindsay Anderson, a British feature film, theatre and documentary director, film critic and leading light of the free cinema movement and of the British New Wave. He's most widely remembered for his 1968 film If, which won the Palme d'Or at Cannes Film Festival in 1969 and marked Malcolm McDowell's cinematic debut. So let's listen to the title track of one of his films, Oh Lucky Man.
If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.
कल सहसा ये संदेश मिला सुने से युग के बाद मुझे कुछ रोकर कुछ क्रोधित होकर तुम कर लेती हो याद मुझे। आज हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की जयंती है। उन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया और कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा की रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुई, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्व है और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
Dear listeners, today is also the death anniversary of N.S. Krishnan, popularly known as Kalaivanar or Lover of Arts, and also as N.S.K., an Indian actor, comedian, playback singer and screenwriter in the early stages of the Tamil film industry in the 1940s and 1950s. He's considered as the Charlie Chaplin of India by many. So let's listen to a song from one of his films, Mudhal Teti, Onula Irunthu.
பொன்னிலையிருந்து 20 வரைக்கும் கொண்டாட்டம் 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 தேதி பொன்னிலையிருந்து சம்பள தேதி பொன்னிலையிருந்து 20 வரைக்கும் கொண்டாட்டம் 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 21 30 வரைக்கும் திண்டாட்டம் 21 30 வரைக்கும் திண்டாட்டம் திண்டாட்டம்
आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र की जयंती है। होठों पर सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, मेरा जूता है जापानी, आज फिर जीने की तमन्ना है, जैसे दर्जनों यादगार फिल्मी गीतों के जनक शैलेंद्र ने महान अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के साथ बहुत काम किया। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी
Also, dear listeners, today we observe the death anniversary of Seamus Heaney, an Irish poet, playwright and translator. He received the 1995 Nobel Prize in Literature. Among his best-known works is Death of a Naturalist, his first major published volume. Through his poems, he paints quite an imagery with his lyrical aspects. Also, dear listeners, today is the birthday of actress Cameron Diaz. Known for her work in both comedy and drama, she made her film debut opposite Jim Carrey in the 1994 comedy The Mask. Cameron Diaz started as the titular character in the comedy There's Something About Mary, which brought her increased fame. Also, what you're listening to in the background is a track from her movie The Holiday. I hope you enjoy it.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।